vine Ipsuna, peste vede cerul Dunai. Să văd Abrahamul, să văd sub tare. देखिए ये जो मेडिटेशन के पहले गीत बजता है इसको ध्यान से सुना करें। गीत के एक एक बोल में जिंदगी के गहरे रहस्य छुपे हैं। तो अभी सब सेट हो जाए, रिलैक्स कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। आज का सेशन हम शुरू करें, उसके पहले हम आप सबसे पूछें कि कल हमने आप सबको एक स्पिरिचुअल इंजेक्शन दिया था घर पर होमवर्क के लिए, आप सभी ने उसकी प्रैक्टिस की, बहुत अच्छा। जिन्होंने ईमानदारी से की वो हाथ उठा दीजिए। अरे ये तो पूरी क्लास ही पास है भाई, भाई जोरदार ताली बजाओ, पूरी क्लास पास है, बहुत बढ़िया। तो क्या होमवर्क था, थोड़ा रिवाइज कर ले। क्या स्पिरिचुअल इंजेक्शन था? मैं भगवान का बच्चा हूँ और प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे, इसके आगे सफलता मेरा जन्म से, बहुत बढ़िया, शाबाश। कल हमने तनाव मुक्त जीवन की कौन कौन सी टेक्निक्स बताई थी? सबसे पहला पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा एक मंत्र बताया था, कौन सा मंत्र था? यह समय भी गुजर जाए। तीसरा, कैसा दिवस मनाना था कल? शुभ। तो सबको कल दुआई दी। अच्छा, अब हम और आगे के सिद्धांतों पर चर्चा करें। कल चार बातों पर चर्चा की थी कि ट्रस्टी होकर रहना, एक बात ये भी बताई थी ना। अब आज हम आपको तनाव मुक्ति के आगे के सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में खुश रहने के नुस्खे। आज का सेशन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए अब आप सब एक काम करें, आप सब तरफ से अपनी मन बुद्धि को आज हटा दें, बस इसी तरफ एकाग्र कर दें, क्योंकि आज हम आपको मानव जीवन में खुश रहने के छोटे छोटे नुस्खे बताएंगे। तो सभी एकाग्रता से ध्यान से सुने। टेक्निक एंड प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस फ्री लाइफ नंबर 5, तनाव मुक्त जीवन का सुनहरा सिद्धांत, मेडिटेशन। अगर आप खुश रहना चाहते हैं मन की खुशी, तो कुछ समय निकालकर मेडिटेशन कीजिए। अब मेडिटेशन शब्द का मीनिंग अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है, पर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि मेडिटेशन माना क्या। मेडिटेशन का मीनिंग होता है अपने भीतर की छुपी हुई विशेषताओं को पहचानना और फिर उस विशेषता का अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यूज करना। मेडिटेशन में बताते हैं कि हर मनुष्य के भीतर एक न एक गुण, एक न एक विशेषता छुपी हुई है। आप पहचाने कि मेरे अंदर कौन सा गुण है, कौन सी विशेषता है, पहले पहचानिए और फिर उस विशेषता का अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यूज कीजिए। आज देखिए, जो भी व्यक्ति महान बने वो कैसे बने? वीर शिवाजी, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, ये सब क्यों महान बने? जन्म से महान नहीं थे ये, इन्होंने अपनी विशेषताओं को अपने कार्य में लगाया। तो आप भी अपने आप को कभी भी साधारण नहीं समझना। आप साधारण नहीं है, आप ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की संतान है। आपका जन्म महान कर्तव्यों के लिए हुआ है, तो आप अपने भीतर आज झांकिए, अपनी विशेषताओं को पहचानिए और फिर उसको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यूज कीजिए। देखिए, आज तनाव का सबसे बड़ा कारण है कि आज व्यक्ति भाग रहा है, हर कोई भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, किस दिशा में भाग रहा है, ये नहीं पता, बस भाग रहा है। और जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, वो चीजें हमारे साथ भी नहीं जानी है। तो तनाव मुक्त जीवन के लिए इस भागती दौड़ती जिंदगी में आज आप कुछ देर रुके, एकांत में बैठे और अपने आप से आज पूछें कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं क्यों भाग रहा हूँ, किन चीजों के पीछे भाग रहा हूँ, आखिर मेरे इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। क्योंकि कहते हैं कि मानव एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर आया है। मानव जीवन एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए मिला है, तो आज कुछ देर एकांत निकालकर अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ, क्या जिन चीजों के पीछे भाग रहा हूँ वो चीजें मेरे साथ जाएंगी। ऐसा तो नहीं कि हम प्रसन्नता पूर्वक दौड़े जा रहे हैं और मुझे पता ही नहीं कि आखिर मुझे जाना कहाँ है। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन अंतिम चरण पर पहुंच जाए और आप स्वयं को खाली पाओ। जागो, समय को पहचानो और स्वयं का मूल्य जानो। केवल खान पान, रहन सहन, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना, ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो मेडिटेशन माना अपने जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करना कि मैं कौन हूँ और मेरे इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। खैर, मेडिटेशन एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो और आगे के सेशंस में हम इस पे डिटेल चर्चा करते जाएंगे। पर अभी हम आपको बताते कि मेडिटेशन करने से हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट होता है, कैसे मेडिटेशन से ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, ये सब बैलेंस में काम करता है। इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन फिजिकल हेल्थ। सबसे पहला इफेक्ट है हार्मोन्स बैलेंस। कल हमने आपको बताया था कि हार्मोन्स इम्बैलेंस से ही बहुत सी बीमारियां होती है। अब आज हम आपको बताते कि कैसे मेडिटेशन हमारे हार्मोन सिस्टम को बैलेंस में रखता है। देखिए, इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे, एकदम हम सिंपल लैंग्वेज में समझाते कि पूरा बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन सिस्टम कैसे बैलेंस हो जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल आदि आदि, और इन सब की मास्टर ग्लैंड, टॉप ग्लैंड पिट्यूटरी होती है, बॉस होती है ये, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस माना ये ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ रहती है। तो जो भी हम मन में विचार करते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, सबसे पहला विचार का इफेक्ट इस पिट्यूटरी ग्लैंड पर पड़ता है, और उसके बाद इंटरकनेक्शन के द्वारा ये सारी बॉडी में पास होता है, क्योंकि ये सारी जुड़ी हुई है आपस में। जैसे मानिए कि आपने चिंता के संकल्प किए, भय के किए, उदासी के किए, तो इसका सबसे पहला इफेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पर पड़ा, और क्योंकि ये नेगेटिव थॉट है तो इसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड पर टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, या ऐसे हार्मोन्स जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड पर गलत हार्मोन्स निकले, गलत केमिकल्स निकले, तो उसके कारण इंटरकनेक्शन से सारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, माना सारी बॉडी में अच्छा मैसेज नहीं जाता, और उसके कारण अलग अलग बीमारियां होती है। अब देखिए, मेडिटेशन के द्वारा कैसे हम इसको बैलेंस में लाते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड पर अच्छा अच्छा मैसेज भेजते, अर्थात मेडिटेशन के समय खुशी के संकल्प, प्यार के संकल्प, शांति के संकल्प करते हैं, और जब अच्छे संकल्प यहाँ किए तो अच्छे संकल्प से पिट्यूटरी ग्लैंड में कैसे केमिकल्स निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे, हम एकदम बोलचाल की लैंग्वेज में समझा लें। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड पर अच्छे केमिकल्स निकले तो इंटरकनेक्शन से सारी बॉडी में अच्छा मैसेज गया, हर जगह पॉजिटिव। या ऐसा आप समझ लीजिए कि मेडिटेशन के द्वारा ये हाइपोथैलेमस ही स्ट्रांग बन जाता है, और हाइपोथैलेमस एक बार स्ट्रांग बन गया तो हाइपोथैलेमस एक ऐसा पार्ट है जिससे बॉडी का पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, नर्वस सिस्टम ठीक काम करता है। हाइपोथैलेमस स्ट्रांग बन गया तो दूसरे जो पार्ट से लंग्स, लीवर, किडनी, स्टमक, ये सब ठीक से काम करते हैं। और इतना ही नहीं, मेडिटेशन के द्वारा किसी भी प्रकार के हार्ट पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स तक को ठीक किया जाता है। कैसे होती है ये रिसर्च, ये हम आगे के सेशंस में विस्तार से चर्चा करेंगे, पर अभी इतना बताते हैं शॉर्ट में कि मेडिटेशन के द्वारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम बैलेंस में आ जाता है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर टेंशन फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन की सबसे अच्छी औषधि है मेडिटेशन। विस्तार रूप से जब हम थर्ड लेसन मेडिटेशन का लेंगे तो उसमें डिटेल चर्चा करेंगे कि कैसे इससे हार्ट या दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डायबिटीज, ये सब टोटल हेल्थ पर मेडिटेशन का इफेक्ट क्या है, उसकी विधि क्या है, ये विस्तार हम एक सेपरेट सब्जेक्ट अलग से लेंगे। पर हाँ, आज इतना जरूर कहते हैं कि मेडिटेशन माना आज आप अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ, अपने जीवन की दिशा और दशा निर्धारित कीजिए। नेक्स्ट है, अब हम प्रैक्टिकल चले। तनाव मुक्त जीवन का सिद्धांत टेक्निक नंबर 6, डोंट कंपेयर। आप कभी भी अपना कंपैरिजन नहीं कीजिए। आज आप एक संकल्प ले लें कि आज से हम अपने जीवन में कभी भी अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकली देखिए कि तनाव कब होता है, प्रैक्टिकली कि जब हम अपनी तुलना करने लगते हैं, जब कंपैरिजन करते हैं तब तनाव होता है ना। प्रैक्टिकल हम क्या करते हैं, ये व्यक्ति ऐसा, फलाना ऐसा, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं, बस वही स्ट्रेस चालू हो जाता है। पर आज आप ये संकल्प लें कि आज से हम कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं करेंगे। स्वयं को स्वीकार करेंगे कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक बहुत अच्छा कलाकार हूँ। मेरे पास अपनी विशेषताएं हैं, गुण हैं, और जो कुछ आपको परमात्मा ने दिया है उसे परमात्म देन मानकर, प्रभु प्रसाद मानकर खुश रहो, संतुष्ट रहो। क्योंकि कहते हैं कि संतुष्टता सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। जहाँ जीवन में संतुष्टता है वहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं, और जहाँ सब कुछ आपके पास है, कितना भी धन, कितने भी साधन, सब कुछ है और संतुष्टता नहीं है तो मालूम कुछ नहीं है। तो नियम ही बना लें कि आज से हम अपना कंपैरिजन नहीं करेंगे। मैं जहाँ हूँ, क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति को आदत होती है कि जहाँ है वो डिससेटिस्फाई होता है, जिन लोगों के साथ है उनके साथ भी असंतुष्ट, वो यही सोचता है नहीं ऐसा होना था, पर नहीं, मैं जहाँ हूँ, जिन लोगों के साथ हूँ, जिन परिस्थितियों में हूँ, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और वैसे भी आप देखिए, आप विचार कीजिए कि यदि आप अपना कंपैरिजन करेंगे भी, अपनी तुलना करेंगे भी, तो कहाँ तक करेंगे, बताइए कहाँ तक करेंगे। कोई भी व्यक्ति संसार में ये दावा नहीं कर सकता कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, कर सकते? आप संसार की बात तो छोड़ो, आपको आपकी गली में आपसे बड़ा व्यक्ति मिल सकता है। तो इससे तो आप नियम ही आज से बना लें कि आज से हम अपना कंपैरिजन नहीं करेंगे। जो कुछ परमात्मा ने दिया है उसे परमात्म देन मानकर, प्रभु प्रसाद मानकर संतुष्ट रहेंगे। देखिए, हम आपको इस पे कहानी सुना देते हैं, तो कहानी से हमेशा के लिए बात आपको पक्की हो जाएगी। आज हम आपको छोटे छोटे संकल्प दिलाएंगे। तो क्या कहानी हम आपको सुनाते हैं कि एक बार इन चारों उंगलियों के बीच झगड़ा हो जाता है। ये कहती मैं बड़ी, ये कहती मैं बड़ी, सब कंपेयर करते एक दूसरे के साथ, मैं बड़ी मैं बड़ी। ये वाली उंगली कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, तो सब पूछते भाई तुम कैसे बड़ी। तो ये कहती कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत किस पे उठाया, मुझ पे ही उठाया ना, तो मैं बड़ी हो गई। फिर ये वाली उंगली कहती है नहीं नहीं मैं सबसे बड़ी हूँ, तो सब पूछते भाई तुम कैसे बड़ी। तो ये कहती कि युद्ध के मैदान में जाते हैं तो विजय का तिलक किससे देते, मुझसे ही देते हैं, इसलिए मैं बड़ी हो गई। फिर ये वाली उंगली कहती नहीं नहीं मैं सबसे बड़ी हूँ, तो सब पूछते भाई तुम कैसे बड़ी। तो ये कहती सांच को आँच ही क्या, मैं तो दिखने में बड़ी हूँ। फिर ये वाली उंगली कहती नहीं नहीं मैं सबसे बड़ी, तो सब पूछते भाई तुम कैसे बड़ी। तो ये कहती कि सब धर्म की आत्माओं ने एक परमात्मा की तरफ किससे इशारा किया, मुझसे किया, तो मैं बड़ी हो गई। सब झगड़ने लगे मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी। अंगूठे जी भी आ गए, बोले मैं बड़ा। सब पूछे भाई तुम कैसे बड़े। तो इसने कहा कि जब किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो किसका काम चलता है, बोले मेरा ही चलता है, तो बोले मैं बड़ा। सब झगड़ने लगे। फिर ये एक जज के पास गए, इनकी कॉन्फ्रेंस हुई कौन बड़ा। तो क्या करा जज ने, इन सब उंगलियों के आगे एक एक बूंदी का थाल रख दिया और कहा बनाओ लड्डू, तो बन सकते हैं। क्या समझा कि जब सब उंगलियां मिलेंगी आपस में तब तो लड्डू बनेगा ना, तो कोई किसी से बड़ा नहीं और कोई किसी से छोटा नहीं। ये जीवन में आप अप्लाई करो कि जब हम सब साथ मिलकर काम करते हैं तब सफलता मिलती। तो परिवार हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो, हर एक का महत्व है इस संसार में, हर प्राणी का महत्व है। कोई किसी से बड़ा नहीं और कोई किसी से छोटा नहीं। तो आपसे नियम बना दे, क्या नियम, कि हम अपना कंपैरिजन किसी के भी साथ नहीं करेंगे। क्योंकि याद रखें कि संतुष्टता सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं, और जहाँ सब कुछ है और संतुष्टता नहीं है माना कुछ नहीं। अब कहानी से याद रहेगा, बहुत अच्छा। ये सब करना है, अभी हम हाँ है करवा रहे हैं तो सब हाँ तो भर रहे हैं इधर से, पर आपसे करना है ये। नेक्स्ट टेक्निक, तनाव मुक्त जीवन का सुनहरा सिद्धांत, लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जिए। तनाव तभी होता है प्रैक्टिकल आप चलो आज, या तो हम पास्ट में ज्यादा जीते हैं या फ्यूचर में रहते हैं तभी हमारी खुशी गुम होती है। आजकल लोग हंसी में कहते हैं, हंसी की बात सुनाए, कहते हैं कि लोग वर्तमान में तो कम रहते, युवा लोग कहते हैं कल्पना में ज्यादा जीते, फ्यूचर मैं ऐसा करूंगा मैं ऐसा करूंगा, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पास्ट में जीते, हमारे जमाने में ऐसा था, ठीक है, और वर्तमान में बहुत कम लोग रहते हैं। पर अगर खुश रहना चाहते हो तो वर्तमान के हर क्षण का आनंद लीजिए, लिव इन प्रेजेंट। याद रखिए कि गुजरे हुए पल दोबारा लौट कर नहीं आते, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, करोड़पति हो, पद्मपति हो, लेकिन बीते हुए पल कोई नहीं खरीद सकता। सच्चाई तो ये है कि हम सभी हमेशा जीने की तैयारी करते रहते हैं और तैयारी करते करते ही यहाँ से विदा ले लेते हैं। जीवन के इस मुकाम पर, इस रास्ते पर आप कहीं भी खड़े हो, आप बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो या उम्र की ढलान पर हो, आप अपने आप से पूछिए कि अब तक आप कैसे जिए, आपने क्या पाया, क्या खोया, कितने मोती चुनकर आपने अपनी झोली में जमा कर रखे। हम हमेशा बस यही सोचते रहे कि जब ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, और इसी सोच में जिंदगी बीत गई। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे हैं? जिंदगी का बड़ा हिस्सा बीते कल की यादों में या आने वाले भविष्य की योजना बनाने में ही बीत जाता है और यूं ही तलतल करती बह जाती है जिंदगी हमारे सामने से। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है और पल बन जाता है कल। पर याद रखें कि बीते कल की चिंता करके, ध्यान से सुनिए, बीते कल की चिंता करके आप उसे सवार नहीं पाएंगे, पर अपना आज जरूर नष्ट कर डालेंगे। इसलिए वर्तमान में जिए। एक गीत है ना बहुत सुंदर, कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो वर्तमान के हर क्षण का आनंद लें। इस पर मुझे बच्चन जी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा वर्तमान पर, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, नभ के कितने तारे टूटे, नभ के कितने तारे टूटे, उसके कितने साथी छूटे, उसके कितने साथी छूटे, बोलो उन टूटे तारों पर, बोलो उन टूटे तारों पर, अंबर का शोक मनाता है, अंबर का शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो आज से क्या करना, क्या करना, वर्तमान में जीना। पास्ट में अगर कुछ हो भी गया तो बार बार उसका चिंतन करते तब खुशी हो होती है। तो आज से कोई घटना हो भी गई तो उसको सोचना नहीं, फुल स्टॉप लगा दो। ये समझ लो कि यही नियति की नीति थी। कहते ना भाई, नियति में यही नीति थी, यही होना था। उस घटना में मेरा कल्याण समाया था बस। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आगे चल के मालूम पड़ता है कि इसके पीछे अच्छाई क्या थी। बस एक बार हो गया ना, बस यही मंजूर था, फुल स्टॉप। इसमें ही मेरा कल्याण था। और दो बात अब अपने आप से आज पूछिए। सबसे पहला पूछिए कि क्या मेरे चिंता करने से, क्या मेरे चिंता करने से भविष्य बदल जाएगा, बदल जाएगा, बताइए। होगा वही जो इस खेल में निश्चित है। खेल चल रहा है ना इतना बड़ा, तो फिर हम क्यों चिंता करें। दूसरा प्रश्न अपने से पूछिए कि जो बीत गया पिछला क्षण, जो बीत गया पिछला क्षण, क्या वही क्षण वैसा का वैसा ही दोबारा लौट कर आना है? आना है तो फिर बार बार उसकी रील खोल कर हम क्यों देखें? रील में लपेट गया है ना, तो ये दो बातें कि दोबारा लौट कर नहीं आना, इसलिए फुल स्टॉप लगाओ, इसमें ही कल्याण था। और दूसरा, मेरी चिंता करने से भविष्य बदलना नहीं है, ठीक है? तो क्या करना, वर्तमान में जो कुछ परमात्मा ने दिया उस हर क्षण का आनंद लेना है। भाई वर्तमान तो खुशी से जियो, वर्तमान अच्छा है जिसका तो भविष्य भी अच्छा बन जाएगा, ठीक है? तो आज से क्या संकल्प, हम एक एक संकल्प दिला रहे, ये खुश रहने के नुस्खे। वर्तमान में जियो, कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं करना, ये एक एक टेबलेट है, ठीक है ना? इंजेक्शन लास्ट में देंगे, पहले टेबलेट लेते जाओ। टेक्निक एंड प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस फ्री लाइफ, जीवन को आनंदमय बनाने के लिए नंबर 8 सिद्धांत, पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, आशावादी दृष्टिकोण। अगर आप आशावादी हैं जीवन में तो आप हमेशा खुश रहेंगे, और जो लोग आशावादी होते हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। कहते हैं आशावादी लोग अधिक समय तक जीवित रहते हैं। तो आप एक संकल्प ले, छोटे छोटे संकल्प हम दिला रहे हैं आपको कि भाई हम और कुछ कर सके या नहीं, पर आज से हर घटना के पीछे अपना दृष्टिकोण कैसा रखेंगे, आशावादी। क्योंकि कहते हैं कि संसार की सभी घटनाएं और वृत्तांत आप नहीं बदल सकते, पर उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। तो देखिए, हर व्यक्ति का जीवन में अपना अपना एक नजरिया होता है, और कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कहते हैं सलाखों के पीछे से किन्हीं दो ने देखा, पहले ने कीचड़ में भी कमल देखा, पहले ने कीचड़ में भी कमल देखा और दूसरे ने चांद में भी दाग देखा, दूसरे ने चांद में भी दाग देखा। तो ये तो अपना अपना नजरिया होता है, पर आप आज नियम बनाए कि अगर खुश रहना है तो मुझे आशावादी दृष्टिकोण रखना है। आशावादी दृष्टिकोण माना दुख में भी सुख खोजे, दुख में भी सुख खोजे, ये कला है। आशावादी दृष्टिकोण माना कि हम अपने जीवन के भरे हिस्से को देखें, अपनी प्राप्तियों को देखें। देखिए कई लोग होते हैं प्रैक्टिकल आपको मिलते हैं, कई लोग जो हमेशा रोते रहते, देखिए ना, हमेशा भगवान से कंप्लेंट, मुझे ये नहीं दिया, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा, मेरा यही ऐसा, हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा कंप्लेंट, बस जीवन के खाली हिस्से को ही देखते, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, होता है ऐसा। पर नहीं, आज से आप अपने जीवन के भरे हिस्से को देखें, अपनी प्राप्ति को देखें कि क्या क्या मुझे भगवान ने दिया और उसका अधिक से अधिक सुख में कैसे प्राप्त करूं। एक बार एक युवक लियो टॉल्स्टॉय के पास आया, आप सबने नाम सुना होगा टॉल्स्टॉय का। तो उस युवक ने कहा टॉल्स्टॉय को कि मेरे पास धन नहीं है, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। तो टॉल्स्टॉय बोला ठीक है, मेरा एक मित्र है, वो इंसान की आंखें खरीदता है, तुम उसको अपनी आंख दे देना, 40-50 हजार रुपए मिल जाएंगे। तो युवक बोला, नहीं नहीं, मैं अपनी आंख नहीं बेच सकता। तो टॉलस्टॉय बोला, ठीक है, अपने हाथ पैर दे देना, 1-1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो युवक को जोर से गुस्सा आ गया कि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो टॉलस्टॉय बोला कि ठीक है, अपनी आंख हाथ पैर देना, तुमको लाखों रुपए मिलेंगे और जीवन में कभी भी तुमको धन की परेशानी नहीं आएगी। तो युवक बोला कि 1 करोड़ में भी मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगा। तो टॉलस्टॉय बोला कि युवक, इसका मतलब तेरे पास तो बहुत कुछ है, तो जो चाहे वो कर सकता है। तो बस इतना सुन के युवक को जीवन के प्रति एक नई रोशनी मिल गई। तो आपके पास भी बहुत कुछ है, आप जरा गौर से देखिए, अपनी प्राप्तियों को देखिए, जीवन के भरे हिस्से को देखिए, क्या क्या मुझे भगवान ने दिया, दुख में भी सुख खोजे तो हमेशा खुश रहोगे आप। और कहते हैं जो निराशावादी दृष्टिकोण के होते हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा ये रिसर्च निकली है कि उन्हें ही ब्लड प्रेशर या हार्ट की डिजीज 3 टाइम्स ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, और आशावादी दृष्टिकोण वालों के सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो आशावादी माता दुख में भी सुख खोज रखेंगे, ऐसा दृष्टिकोण बहुत अच्छा, हाथ उठाओ भी रखेंगे, इससे रहेगा ना सुन रहे हैं। नहीं तो कभी कभी होता है मन इधर है, बैठे यहाँ और बाकी पता नहीं कहाँ की सैर करके आ जाते। अच्छा, टेक्निक एंड प्रिंसिपल, तनाव मुक्त जीवन का सुनहरा सिद्धांत, निरंतर गतिशील रहना, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहो, कभी भी अपने जीवन में रुकना नहीं। आप किस गति से बढ़ रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर बढ़ने का महत्व है। कहते हैं कि जीवन एक सीधी सीढ़ी नहीं है, ये एक सांप सीढ़ी का खेल है, इसमें सब प्रकार की परिस्थितियां आती है, कभी सुख के क्षण आते हैं, कभी दुख के आते हैं, कभी अनुकूल परिस्थितियां आती है, कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, बदलती रहती परिस्थितियां। पर प्रतिकूल परिस्थितियों में आप रुके नहीं। व्यक्ति क्या करता है, जब अपोजिट परिस्थितियां उसके जीवन में आती है तो परिस्थितियों को देखकर वो घबरा जाता है, रुक जाता है। पर आप आज से एक संकल्प लें, ये छोटी छोटी स्पिरिचुअल टैबलेट्स, जारी टैबलेट अंदर एक एक ड्रॉप, कि कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियों, हमें परिस्थितियों को देखकर जीवन में रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। क्योंकि याद रखें, परिस्थितियां शक्तिशाली नहीं है, परिस्थितियों से शक्तिशाली आप हैं। आप अपनी शक्तिशाली स्थिति से परिस्थितियों को बदल सकते हैं। तो निरंतर आप गतिशील रहें। किस गति से बढ़ रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर बढ़ते रहने का महत्व है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, बचपन में सुनाई जाती है, बहुत फेमस स्टोरी, कि कछुए और खरगोश की कंपटीशन हुई कौन फर्स्ट आता है, और खरगोश बहुत तेज दौड़ा कि भाई मैं जीत जाऊंगा, पर फिर भी वो हार गया क्योंकि वो बीच में रुक गया था, बताती ना पेड़ के नीचे विश्राम कर लिया उसने सोचा। और कछुआ जीत गया, भले ही धीरे दौड़ा पर निरंतर दौड़ा। तो कैसी भी परिस्थितियों जीवन में हमें रुकना नहीं है, निरंतर दौड़ना है, गतिशील रहना है। भले ही कहती है कुछ भी हो, तो कछुए खरगोश की कहानी हमको ये बताती है। इस पर मुझे एक झरना और राहगीर का प्रसंग याद आता है कि एक बार जब घोर अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ नहीं सूझता था, तब भी झरना अपने अविरल प्रवाह से तलतल करता बहते जा रहा था। तो एक राहगीर ने उससे पूछा कि हे निर्झर, तनिक रुको, कुछ विश्राम तो कर लिया करो, तुम्हें थकावट नहीं आती क्या? तो झरना कहता, हे राहगीर, मुझे जिस महासागर से मिलना है उसकी दूरी अनंत है, मुझे जिस महासागर से मिलना है उसकी दूरी अनंत है, रुकूंगा तो इधर उधर भटकूंगा, रुकूंगा तो इधर उधर भटकूंगा, और चलते रहने से वो दूरी कम होगी। तो ये कहकर वह झरना बहते ही गया, बहते ही गया। तो क्या समझा कि आप असफलता से घबराइए मत, क्योंकि असफलता की राख में ही सफलता की चिंगारी छुपी हुई है। कभी भी परिस्थितियों को देखकर कर्म करना नहीं छोड़ो, आप कर्म करते रहिए लगातार, तो आपके कर्म करते रहने से परिस्थितियां कभी भी आपके अनुकूल हो सकती। गीता में भी कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, परिस्थितियों को देखकर कर्म करना छोड़ना नहीं। देखिए, हम आपको इस पे चीन की एक बहुत प्रसिद्ध लोक कथा सुनाते, इससे आपको याद रहेगी बात कि एक बार चीन के एक छोटे से टाउन में एक भविष्यवाणी हुई। हाँ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। वहाँ भविष्यवाणी हुई कि अगले 10 सालों तक यहाँ बरसात नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। तो बस ये भविष्यवाणी सुनकर सब किसानों ने अपने घरों में अपने अपने हल रख दिए, पर एक किसान सूखे खेत में भी हल जोत रहा था, सूखे खेत में हल चला रहा था। तो ऊपर जाते हुए बादलों को ये बात अजीब सी लगी। उन्होंने रुककर किसान से पूछा कि तुमने सुना नहीं कि अगले 10 साल तक यहाँ बरसात नहीं होगी, तो तुम सूखे खेत में क्यों हल जोत रहे हो? तो किसान ने कहा बादलों को कि ऐसा ना हो कि 10 वर्षों में मैं अपना कर्म करना भूल जाऊं, इसलिए सूखे खेत में भी हल चला रहा हूँ, मैं कर्म करना ना भूल जाऊं। तो बस बादलों को ये बात छू गई, और बादलों ने भी सोचा कि अरे मैं भी अपना कर्म करना ना भूल जाऊं, और उन्होंने तुरंत बरसना शुरू कर दिया। तो क्या समझा कि कर्म करते रहे, परिस्थितियां कभी भी आपके अनुकूल हो सकती है। कहते हैं ना कि किश्ती तूफान से निकल सकती है, किश्ती तूफान से निकल सकती है, बुझी शमा जलकर फिर रोशन हो सकती है, बुझी शमा जलकर फिर रोशन हो सकती है, इरादे न बदल, इरादे न बदल, न मायूस हो, ये किस्मत कभी भी बदल सकती है, ये किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो कर्म में लगे रहना ही सफलता की सीढ़ी है। तो कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, रुकना नहीं, ठहरना नहीं, निरंतर कर्म करते रहना, ये किस्मत कभी भी बदल सकती है, ये किस्मत कभी भी बदल सकती, याद रहेगा। बहुत अच्छा। अब वैसे तो जितनी भी बातें बताई ये सारी महत्वपूर्ण है, पर अब हम जो आपको बात बता रहे हैं ये मोस्ट आईएमपी, जैसे कहते हैं ना मास्टर की,
अब एक छोटी सी बात है, पर अगर उसको ही आज आपने समझ लिया, अगर उतर गया आपके अंदर ये कैप्सूल, तो आपका अभी से लेकर सारा जीवन ही आनंदमय बन जाएगा। इसलिए आप फुल कंसंट्रेशन से सुनिए, जीवन को आनंदमय बनाने के लिए आज आप एक संकल्प लें कि और कुछ हम जीवन में कर सकें या नहीं, पर हम सदा खुश रहेंगे। क्या संकल्प? कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियां हमारी आंतरिक खुशी को, मन की खुशी को गुम नहीं करे। सदा खुश रहना टेक्निक, सदा खुश रहना। कैसे रहना ये सब अब आपको बताते हम, नहीं तो आप बोलेंगे वाह बहन जी ने कह दिया खुश रहो, कैसे रहो? आप देख सोचिए कि आप साथ किसकी संतान है, किसके बच्चे? परमात्मा के। तो ये अपने आप से पूछिए कि मैं भगवान का बच्चा हूँ जिसकी महिमा में गाते हैं कि वो खुशियों का भंडार है, खुशियों का सागर है। तो भगवान के बच्चे ही अगर इस संसार में खुश नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा? जैसे आप देखिए कोई राजा का बच्चा है तो भले ही छोटा है तो भी उसको चलते फिरते स्मृति रहती है कि मैं राजकुमार हूँ, होता है ना? तो आपको भी आज ये खुशी अंदर हो कि हम साधारण नहीं है, हम खुशियों के सागर परमात्मा की संतान है, भगवान के बच्चे, इसलिए हमको खुश रहना ही है। वैसे भी कहते हैं कि खुशी भगवान के द्वारा दिया हुआ ये एक गिफ्ट है, ये एक उपहार है जो सबको परमात्मा ने दिया है। इच्छुक व्यक्ति इसे निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लाखों रुपए देकर भी इसे खरीदा नहीं जा सकता। तो खुशी भगवान के द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट है, उपहार है। कहते खुशी एक खजाना है, खुशी को क्या कहा? खजाना। कहते खुशी जैसा खजाना नहीं। आज आप देखिए कि किसी व्यक्ति के पास बहुत खजाना आ जाए, धन संपत्ति, लॉटरी लग जाए, तो वो व्यक्ति अपने खजाने को देख देख के खुश होता है, होता है ना? वाह ये खजाना, इतना खजाना। पर उस खजाने की तो कोई गारंटी नहीं, आज है और कल नहीं है। पर आप भगवान के बच्चे हैं तो भगवान ने आप सबको खजाने के रूप में आज खुशी दे दी है। आप सबके पास कौन सा खजाना है? खुशी का। और ये ऐसा खजाना आपको मिल गया आज कि जिस खजाने को कोई भी लूट नहीं सकता। जितना आप बांटोगे और ही उतना बढ़ता जाएगा। ऐसा खजाना कि आज लोग करोड़ भी खर्च कर दे पर ये खजाना नहीं मिल सकता। तो आज ये खुशी अपने अंदर भरें कि हम है ही भगवान के बच्चे। खुशी तो भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। आज मुझे खुशी का खजाना भगवान से मिल गया। क्या मिल गया? खुशी का खजाना। कहते खुशी जैसी दवाई नहीं, 100 रोगों की दवाई है खुशी। कभी कभी होता है दवाई काम नहीं करती है। और मन खुश है, ऐसे ऐसे रिसर्च हुए कि जिन लोगों का मन खुश है तो उनको बीमारी का इफेक्ट भी पता नहीं पड़ता। कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। देखो खुशी को क्या क्या कहा गया, खुराक कहा गया है। सबसे बढ़िया डाइट है हैप्पीनेस, खुशी जैसी खुराक नहीं। मानो आपके सामने 36 प्रकार के भोजन रखें, पर अगर मन खुश नहीं तो वो भोजन अच्छे नहीं लगेंगे, पकवान भी फीके। और मन खुश है और अगर सूखी रोटी भी है तो भी मन की खुशी में सूखी रोटी भी पच जाएगी। तो इतना खुशी का इफेक्ट है। कहते जब मन खुश रहता है तो तन का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। देखिए जब हम खुश रहते हैं ना, आंतरिक खुशी, बाहर से नहीं, अंदर जब खुश होते हैं तो हमारे ब्रेन में एक तरंगे निकलती है, अल्फा वेव्स। ये खुश रहने का इफेक्ट है। और जब ये तरंगे ज्यादा निकलती है तो कहते इससे व्यक्ति का कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है। ये तरंगों से एकाग्रता की शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति बढ़ती है। दूसरा, जब आप खुश रहते हैं तो हमारे शरीर में एक हार्मोन निकलता है, केमिकल एंडोर्फिन्स, नेचुरल निकलता है। और जब ये केमिकल निकलता है तो इससे हमारी रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। और कहते हैं ये केमिकल निकलता है तो नेचुरल व्यक्ति के अंदर एक उमंग, उत्साह, कॉन्फिडेंस, ये केमिकल व्यक्ति का एंथुजियाज्म बढ़ाता है और नेचुरल एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है। इतना इफेक्ट है। तो खुश रहने से स्वास्थ्य भी अच्छा। पर आजकल लोग खुश रहने ही भूल गए। कहाँ जाते हैं खुश रहने के लिए, बताइए क्या करते हैं? पहले लोग ऐसे ही हंस लेते थे, आज हंसना भूल गए, इसलिए हंसने के लिए भी क्लब जाना पड़ता है। माना लाफिंग क्लब्स जाते हैं, तो लाफिंग क्लब्स माना पैसा दो और हंसना सीखो। आजकल हंसने के लिए भी दम लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। कहते हैं हंसने की भी FD करा ली लोगों ने, कभी कभी हंसेंगे। और इतने ही नहीं, आपको पता हो कि January 5 वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में मनाया जाता है। सुना आप सबने, विश्व हास्य दिवस। माना 365 दिन में से एक दिन खुश रहने का, एक दिन हंसने का, और बाकी दिन क्या करना। और इतने ही नहीं, अभी तक आपने सुना हो कि भाई नींद नहीं आती तो नींद की गोलियां निकल गई, स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं। पर अब खुशी नहीं है तो खुश रहने के लिए भी दवाइयां निकल गई हैं। उसका नाम है हैप्पी पिल्स। हैप्पी पिल्स लो और खुश रहो। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, बॉम्बे, उसमें छोटे छोटे बच्चे ये टेबलेट अपने पॉकेट में लेकर घूमते हैं। पर साइकेट्रिस्ट बहुत चिंतित हैं कि ये दवाइयां कुछ समय के लिए तो खुशी देंगी, पर लॉन्ग रन में इसका बहुत डेंजरस और साइड इफेक्ट होता है। तो देखिए लोग क्या क्या करने लग गए। पर आप ही आज बताइए दिल से कि क्या सच्ची खुशी, मन की खुशी, लाफिंग क्लब्स में जाने से मिलेगी? बताइए। वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाने से मिलेगी? बताइए। हैप्पी पिल्स लेने से मिलेगी? सच्ची खुशी का खजाना तो मन में छुपा है, और जब मन में छुपा खजाना बाहर आता है तब खुशी मिलती है। और ये खजाना बाहर आता है मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा। और यही ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य ऑब्जेक्ट है कि मेडिटेशन के द्वारा हर मानव मन को खुशनुमा बनाना। तो अब आप अगर चाहते हैं कि आपके चेहरे सदा खुश रहे, मन की खुशी रहे, मन खुश तो बाहर भी खुश, पहले बताओ कौन कौन चाहता है कि हमारे चेहरे खुशी के रहे? हाथ उठाओ, जिसने नहीं उठाया माना वो डल लेना चाहते। अच्छा, अब सबने हाथ तो उठाया, ये बहुत अच्छी बात, पर अब उसके लिए करना क्या? अब आप ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं आपके चेहरे हमेशा टमाटर जैसे लाल खुशी से रहे, तो उसके लिए हम आज आपको एक प्रतिज्ञा कराते हैं। वो आप प्रतिज्ञा करेंगे तो हमेशा आपके चेहरे खुश रहेंगे। करेंगे सब प्रतिज्ञा? पर प्रतिज्ञा कैसी? ये नहीं कि आज प्रतिज्ञा की, आज तो याद है, दो चार दिन बाद परिस्थिति आई, प्रतिज्ञा रही इस हॉल में और हम अपने हाल में, ऐसा नहीं। प्रतिज्ञा करना दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा किसकी फेमस है? भीष्म की फेमस है ना? तो आज सबको एक दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। दृढ़ प्रतिज्ञा माना कि उस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए चाहे आपको सहन करना पड़े, चाहे आपको कष्ट उठाना पड़े, किसी की सुनना पड़े, पर दृढ़ प्रतिज्ञा माना, मर जाए मिट जाए लेकिन उस प्रतिज्ञा से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या प्रतिज्ञा करनी है? अब सुनिए, प्रतिज्ञा दृढ़, पर क्या करना है? ये आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन, ये सबको मिलेगा, बाहर जाएंगे जब लेकर जाना है, बिना इंजेक्शन लगाए नहीं जाना। क्या प्रतिज्ञा हम पढ़ते हैं और उसके बाद इसको समझाते कैसे करना, पहले पढ़ते हैं। आज का होमवर्क भी है, ये प्रतिज्ञा है स्पिरिचुअल इंजेक्शन। मैं खुशियों के सागर की संतान हूँ। किसकी संतान हूँ? खुशियों के सागर, खुशी के खजानों का मालिक हूँ। भाई भगवान के बच्चे माना खुशी के खजाने के क्या है? मालिक। खुशी मेरा खजाना है, मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना है। क्या प्रतिज्ञा हुई? फिर हम पढ़ते, मैं खुशियों के सागर की संतान हूँ, खुशी के खजानों का मालिक हूँ, सदा खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना ही है। अब हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, कैसे समझना, कैसे करना आज का इंजेक्शन। सबसे पहला, आज आप संकल्प लें कि है हम भगवान के बच्चे और भगवान की महिमा में गाते हैं कि वो खुशियों का सागर है, तो मैं खुशियों के सागर की संतान हूँ। और देखिए, जैसे बच्चा होता है तो बच्चे का पिता की प्रॉपर्टी पर हक होता है, तो मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो बच्चा होने के नाते खुशी के खजानों का क्या हूँ? मालिक। सब मालिक बन गए? देखो, लोग तो खुशी के लिए ढूंढ रहे हैं, और आज से आप सब खुशी के खजाने के क्या बन गए? बहुत बढ़िया, मालिक बन गए। और खुशी मेरा क्या है? क्या है? खजाना है, मुझे खुश रहना ही है। रहना है में तो गड़बड़ हो जाएगी, रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना है। अब देखिए कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम देना, चित्र सहित आज इस प्रोग्राम को उतार लें। आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन, हम आपको मेडिटेशन कराएंगे, प्रतिज्ञा कराएंगे, पर कैसे करना ये देखिए। ये देखिए, आप यहाँ सबसे पहले स्वयं को बिठा दें। ये बच्चा है, मैं भगवान का बच्चा, ऐसे बैठ जाओ सब, ठीक है, खुश एकदम। और ऐसा फील करो, ये देखो ये पानी का झरना आ रहा है, ये झरना है एक, तो ऐसा फील करिए कि पानी का झरना नहीं, खुशी का झरना परमात्मा से मेरे ऊपर बरस रहा है। बस खुशी का झरना, खुशी मेरा क्या है? खजाना, यहाँ लिखा है, बस खजाने के रूप में परमात्मा से मुझे खुशी मिल रही है, झरना बरस रहा है, खुशी का बरस रहा है। और इतना मेरे अंदर ये खुशी का झरना बरस गया, इतना खुशी का खजाना भर गया, मैं इतना भरपूर हो गया इस खजाने से कि अब मुझसे खुशी के रंग बिरंगे क्या निकल रहे हैं? फव्वारे निकल रहे हैं। ये क्या निकल रहे हैं? रंग बिरंगे फव्वारे। ये तो एक सिंबॉलिक है भाई, पानी का झरना है, पानी के रंग बिरंगे फव्वारे। पर आपको ये विजन देना है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, खुशी का झरना बरस रहा है, खजाना बरस रहा है। जैसे किसी को खजाना टपकता जाए तो कितनी खुशी होती। तो वाह, आप ऐसा सोचो कि लोग तो खुशी के लिए भटक रहे हैं और मेरे को आज भगवान उपहार के रूप में खुशी के खजाने से क्या कर रहा है? भरपूर बरस रहा है। और इतना मैंने उसको भर लिया कि अब मुझसे खुशी के रंग बिरंगे क्या निकल रहे हैं? फव्वारे। तो ऐसा विजन देते हुए मेडिटेशन करना, अभी हम करवाते हैं आपको। और फिर संकल्प दें, मैं खुशियों के सागर की संतान, खुशी के खजाने का मालिक हूँ, मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना है। अब आप सभी अपनी आंखें बंद करें और मेडिटेशन का साइलेंस म्यूजिक बजेगा। जब आप मेडिटेशन करें तो इस विजन को ध्यान में रखते हुए करेंगे। सभी आंखें बंद कर लें। हम सभी चलते हैं परमात्मा से खुशी का खजाना प्राप्त करेंगे। अपने आप को एक सागर के पास ले चलें, चलें अपने भीतर की ओर, संकल्प करें, मैं ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की संतान हूँ, खुशियों के सागर की संतान हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, बच्चे होने के नाते परमात्मा से मुझे खुशी का खजाना गिफ्ट में मिल रहा है। फील करें कि परमात्मा से अथाह खुशी का खजाना बरस रहा है। खुशी का झरना बरस रहा है। मैं अपने अंदर इस खुशी के खजाने को भर रही हूँ। आहा, सचमुच कितनी खुश नसीब आत्मा हूँ कि आज लोग खुशी पाने के लिए तरस रहे हैं। पर वारे में भाग्यवान आत्मा जो आज मुझे खुशी खजाने के रूप में मिल गई, आज से खुशी तो मेरा खजाना बन गया। फील करें परमात्मा से निरंतर खुशी का झरना बरस रहा है। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना ही है। आहा, अब मुझसे खुशी के रंग बिरंगे फव्वारे निकल रहे हैं। आज मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ कि संसार की कोई भी परिस्थिति मेरी आंतरिक खुशी को गुम नहीं कर सकेगी। मैं भगवान का बच्चा हूँ, खुशियों के खजानों का मालिक हूँ, मुझे खुश रहना ही है। जब तक जीना है खुश रहना ही है, ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। अब हम सभी खड़े होकर इस प्रतिज्ञा को करेंगे। सभी खड़े हो जाएं और अपना राइट हैंड स्ट्रेट मुट्ठी बांधें, स्ट्रेट खड़े हों और दृश्य यही बनाएं कि भगवान से खुशी का खजाना बरस रहा है और मुझसे खुशी के रंग बिरंगे फव्वारे। हम बोलेंगे और आप खुल के बोलिएगा, इस प्रतिज्ञा को हमारे पीछे रिवाइज करिएगा। सबकी मुट्ठी बंद। मैं खुशियों के सागर की संतान हूँ, खुशी के खजानों का मालिक हूँ, खुशी मेरा खजाना है, मुझे खुश रहना ही है। जब तक जीना है खुश रहना ही है। अभी हमको पीछे तक आवाज नहीं आई है, खुल के आप बोलिए इस प्रतिज्ञा को, फिर हम रिवाइज करते हैं। मैं खुशियों के सागर की संतान हूँ, खुशी के खजानों का मालिक हूँ, खुशी मेरा खजाना है, मुझे खुश रहना ही है। जब तक जीना है खुश रहना ही है, ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। हाथ नीचे कर लें। सभी ने की प्रतिज्ञा। अब जब भी कोई परिस्थिति आए जिससे आपकी आंतरिक खुशी गुम हो तो क्या करना, आज का ये दृश्य याद कर लेना कि आज के दिन हमने ऐसी खुशी की प्रतिज्ञा की थी। अभी सभी बैठ जाएं। अच्छा, अब ये बताइए, प्रतिज्ञा तो सबने कर ली, अब ये प्रतिज्ञा पक्की हो जाए। सभी इधर देखो, इधर उधर नहीं, ये प्रतिज्ञा पक्की हो जाए उसके लिए रोज सुबह उठकर इस प्रतिज्ञा को रिवाइज करना, नहीं तो दो चार दिन तो याद रहेगी, ठीक है ना। और एक काम करिएगा आप, ये जो स्पिरिचुअल इंजेक्शन है इसको बड़ा बड़ा करके अपने घरों में दीवारों पर लगा लो, ऑफिसेज में लगा लो और इसको बार बार पढ़ते रहो। अच्छा, ये बताइए कि आज का डोज कितनी बार करेंगे आप, जो डिसाइड कर देंगे। हाँ, कितनी बार, आवाज नहीं आ रही जोर से, कितनी बार? हाँ, बार बार। आज तो करिए, पल पल ही मुझे खुश रहना। अगर आप चाहते सचमुच कि आप कल जब यहाँ आए तो आपके चेहरे टमाटर जैसे हो जाएं, तो आज पल पल इस स्पिरिचुअल इंजेक्शन को करिए, धुन लगा दो आज इसकी। लोग कहते हैं ना, आज तो एक काम करो आप, जितने भी व्यर्थ संकल्प है सबको आज समेट लो, केवल एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ आज। एक शुद्ध संकल्प, मैं खुशी के सागर की संतान, खुशी के खजानों का मालिक, मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना। चलते फिरते ये दोहराते रहे, और ये विजन कि निरंतर मुझसे, परमात्मा से मेरे अंदर ये खुशी का झरना बरस रहा है और बस निरंतर मुझसे खुशी के फव्वारे मिल रहे हैं। तो फिर आप जिससे भी मिलेंगे उसको भी आपसे क्या स्थिति का फील होगा, उसको भी क्या मिलेगी, खुशी। तो आज का डोज कितनी बार, पल पल ही मुझे खुश रहना है। आप जब यहाँ से उठे तो पहला कदम ही खुशी का उठे, ठीक है ना। तो इसको घरों में लगा लो, दीवारों पर, ऑफिस में, और रोज इस प्रतिज्ञा को रिवाइज करना। और जब कोई परिस्थिति आती है जिससे आपकी आंतरिक खुशी गुम होती है तो आज का दृश्य, आज की घड़ी, आज का समय याद करना कि इस तरह खुशियों के महोत्सव में हमने आज ये प्रतिज्ञा की थी, ठीक है। अच्छा, अब एक खास बात, हाँ, ये हो सकता है कोई पूछे बहन जी खुश कैसे रहे, तो उसके लिए ये सारे नुस्खे बता दिए कि एक, कभी भी अपना कंपैरिजन नहीं करना तो खुश रहोगे, वर्तमान में जिएंगे तो खुश रहेंगे, आशावादी दृष्टिकोण रखना तो खुश रहेंगे, और निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहना, ये खुश रहने के नुस्खे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक खास बात, अभी सबने प्रतिज्ञा तो की, पर अब हम आप सबके सामने एक खुशी का म्यूजिक बजाएंगे। वो म्यूजिक बजता रहेगा, उस म्यूजिक को सुनकर आप अंदर ही अंदर खुशी से झूम सकते हैं। जब वो म्यूजिक बजेगा, सुनना अभी कैसे हमको महोत्सव मनाना है, जब वो म्यूजिक बजेगा तो आप सब ये सीन अपने सामने रखना कि बस परमात्मा से खुशी का झरना बरस रहा है और मुझसे फव्वारे निकल रहे, और गीत बजता जाए और आप बार बार इस प्रतिज्ञा को अपने अंदर दोहराते जाना। फिर लास्ट में हम आपको स्टेज से इशारा करेंगे, जब हम बोलेंगे तो कुछ ऐसा गीत है एक, आप सबको खुलकर उस गीत को गाना है, आप सबको मिलकर गाना है। हम ये बता दें, कल बताया था मेडिकली किसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आर्टरीज क्यों सिकुड़ गई, क्यों धमनियां सिकुड़ गई, कि हमने अपने जीवन से खुशी के प्रवाह को रोक दिया। और आज खुशी को फ्लो होने दो, खुशी के प्रवाह को आज होने दो, तो आर्टरीज आपकी खुल जाएंगी। तो हम कह देते हैं, जो आज इस गीत को खुल के गाएंगे, तनाव तभी होता है जब अंदर ही अंदर सिकुड़ते हैं, आज जो लोग खुल के गाएंगे उनकी आर्टरीज खुल जाएंगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल लेवल सब ठीक होगा। पर उसका ये है कि खुल के गाना है, आप सिकुड़ जाएंगे तो आर्टरीज सिकुड़ जाए। जिसको अपनी आर्टरीज खोलना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक, तो आज हम यहाँ से इशारा करेंगे और खुल के आप सबको वो गीत गाना है, ठीक है। पर हम इशारा करेंगे, हाँ, तो आज ब्लड की जगह क्या फ्लो करने दो आर्टरीज में, खुशी, बस खुशी को बहने दो, खुशी बहेगी तो आप खुश रहेंगे, ठीक है। पर अभी क्या करना, अभी एक म्यूजिक बजेगा, तो उस म्यूजिक के समय, हाँ, अभी आप सब अपनी आंख बंद करें, तब वो गीत गाना है, वो हम आपको स्टेज से इशारा कर देंगे। अभी म्यूजिक बजता रहेगा, आप सब इस प्रतिज्ञा को दोहराते जाएं अंदर ही अंदर, और ये सीन कि खुशी का झरना बरस रहा है, खुशी के फव्वारे निकल, हाँ, सब अपनी आंखें बंद, प्रतिज्ञा दोहराते जाएं, प्रतिज्ञा दोहराते जाएं,
सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, जो हो न होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, आज को न खाना, आज न कल आएगा। खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसका है नाम जिंदगी।
प्रतिज्ञा दोहराते जाए
नाचो हाथ, नाचो हाथ, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत, झूम झूम के नाचो,
खुशी के फव्वारे निकल रहे हैं,
हाथ गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के
फव्वारे निकल रहे हैं,
खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ
जाए।
आज हंसू मैं इतना के मेरी आंख लगे रोने, आज हंसू मैं इतना के मेरी आंख लगे रोने, आज मैं इतना गाऊं के मन में दर्द लगे होने।
खुशी के फव्वारे निकल रहे हैं,
thank you.
खुशी के गुब्बारे आ गए। सभी तालियां बजा के खोलिए आज। ताली बजाइए जोर से। खुशी के गुब्बारे,
अभी तक खुल के आवाज नहीं आई है, फिर खुल के गएंगे सभी पीछे तक।
सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा।
खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए।
होना होगा होगा वही सोच के तू क्या पाएगा।
ताली बजा के ना।
सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा।
अब भाई पीछे वालों की आवाज अभी तक नहीं आई है, सब खुल के गई है।
आज ये न कल आएगा। हम सब इससे बड़ी क्या खुशी, साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसी का नाम जिंदगी। सोच का क्या जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा।
हाँ भाई, अब जोर से आवाज आनी चाहिए सभी की। हाँ, गीत धीरे बजेगा और आवाज आप सबकी चाहिए।
सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा वो सोच के क्या पाएगा।
सभी कैसे हैं? सभी कैसे हैं? खुश? अच्छा, हाथ हिलाओ, सब खुश है तो अच्छा, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए सब। अब हमको दो तीन बातें करनी है, क्योंकि हमेशा ऐसे ही आज का दृश्य, आज की प्रतिज्ञा याद करना। आप सभी साइलेंस, दो तीन बातें थी। ये तो आज खुश रहने के, खुशी का महोत्सव मनाया सबने मिलकर। कल से हम इस शिविर का एडवांस कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबको पता है ये दो दिन बेसिक कोर्स था। कल से शिविर का एडवांस कोर्स प्रारंभ होगा, जो पूरे 9 दिन तक चलेगा। टाइमिंग्स ठीक 6 से 7:30 जैसा आज रहा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल से विधिवत कोर्स प्रारंभ होगा, तो आप सब जब यहाँ आए तो एक नोटबुक पेन लेकर आए, ताकि आप कुछ नोट कर सके। कल हम आपको लिखवाएंगे। कल हम इस शिविर का एडवांस कोर्स का लेसन फर्स्ट, स्वयं की खोज शुरू करेंगे। दूसरी बात, एक ने हमसे कल पूछा कि बहन जी, आपने कहा ज्यादा से ज्यादा दुआएं जमा करनी है, तो मुझे इंस्टेंट दुआ जमा करने का एक कोई साधन बताओ। तो हमने सोचा कि आज आप सबके पास एक अवसर आया है। वैसे तो आप सारा जीवन ही दुआएं जमा करना, दुआएं देना, पर हम आपको आज एक होमवर्क देते हैं। करेंगे आप सब, इससे आपको दुआएं मिलेंगी। आपको बताते हैं, कल जब आप यहां आए तो हर व्यक्ति कम से कम अपने साथ दो दो को अवश्य लाना, ठीक है। अब आप सोचेंगे इससे क्या दुआ। आपको नहीं पता कि 9 दिन के अंदर उस व्यक्ति के जीवन में जो उसको खुशी मिलेगी, उसकी दुआएं, उसका पुण्य किसको मिलेगा? आपके ऊपर। और यही आड़े वक्त काम आना है। एक जगह हमने कहा तो एक तो 10 को ले आया, तो कम से कम हर व्यक्ति अपने साथ दो दो को लाना, ठीक है ना? अच्छा,